नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णु पास भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि बार सत्संग देने। समय कम है, समय हो ही गया है, तो भी दो शब्द मैं कहूँगा। श्री रूप गोस्वामी के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न विद्वानों ने बहुत सूक्ष्म विवेचन के साथ में उनका तत्व निरूपण किया है, किंतु फिर भी मैं समझता हूं कि अनंत देव भी अनंत वर्षों में भी रूप गोस्वामी के इन अप्राकृत गुणों और उनके अप्राकृत चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। तो हम जीव छार क्या है जो उनके गुणों का वर्णन हम लोग कर सकें, तभी हम लोग रूप गोस्वामी के अगाध अनंत चरित्र रूपी समुद्र के किनारे बैठे हुए केवल बाहर से हम देख रहे हैं, बहुत थोड़े से उनकी लहरियों को हम देख रहे हैं, किंतु उसमें अभी डूब नहीं रहे। मैं तो एक उनके संबंध में कुछ बोल करके अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। पहली ये, जैसे श्रीमद् भागवत में ये परिभाषिक श्लोक है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान। उसी प्रकार से रूप गोस्वामी ने भक्ति के प्रत्येक स्तर का एक परिभाषा दी है। प्रत्येक चीज श्रद्धा से लेकर के निष्ठा किसको कहते हैं, श्रद्धा किसको कहते हैं, रुचि किसको कहते हैं, साधन किसको कहते हैं, भाव किसको कहते हैं, सभी दिए। उसमें से दो एक को मैं स्पर्श करता हूं, क्या है? पहले भक्ति का डिफिनेशन दिया जो पूर्वाचार्यों ने और श्रीमद् भागवत इत्यादि शास्त्रों में हमारे और ऋषियों महर्षियों नारद जी ने सांडिल्य ने सांडिल्य सूत्र में भक्ति की जो परिभाषा थी, उन सबको क्रोड़ीभूत करते हुए एक चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा से बहुत ही सुंदर अनुपम, जो कि श्रद्धा से लेकर और मादनाख्य भाव तक को स्पर्श करता है, ऐसी परिभाषा दी। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनाभूतम आनकुल्लेन कृष्णानुशीलनम भक्ति। इसके विस्तृत व्याख्या संभव नहीं आज। दूसरी बात, साधन किसको कहते हैं? हम लोग साधन जो कर रहे हैं, हम मेरे समझ से सबका तो नहीं कर सकता कि तो अधिकांश लोगों का साधन अभी आभास है, कृति साध्य भवेत साध्य भाव साधन अभिधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकटं रिदि साध्य। यदि भाव को लक्ष्य कर, रति को लक्ष्य करके साधन हो, वो शुद्ध साधन है। अभी हम लोग भाव ही नहीं जानते कि भाव किसको कहते हैं। रूप गोस्वामी ने भाव या रति को बतलाया। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सुज्ञान सुसाम्य भाग रुचि भी चित्तम मास कृदसौ भाव रुचि। कितनी बड़ी चीज, ये शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, यही प्रेम का स्वरूप है। रुचि के द्वारा लसित होकर के स्फूर्ति प्राप्त होता है और कृष्ण की सेवा में निवृत्त होता है। जब ऐसा होगा, चित्त को अत्यंत कोमलीकृत करके दबीभूत कर देगा, तब ये जाकर के साधन होगा। भाव प्रेम को लक्ष्य करके जो साधन होगा उसको भाव भक्ति कहते हैं। भाव भक्ति के लिए बतलाया, प्रेम भक्ति के लिए सम्यक मश्रणितो स्वांतो ममत्व अतिशय अंकित भाव स एव संद्रात्मा बुधौ प्रेम निगत। चित्त को अत्यंत मश्रणित कोमल कर दे, और ममता अतिशान, ममता अत्यंत हो, कृष्ण मेरे हैं ऐसी ममता उसमें, जैसे यशोदा मैया को है, हमारा पुत्र है, नंद बाबा को है, सखाओं को है, गोपियों को तो कहने की बात नहीं। ममता अतिशान पिता भावसाशय सांद्रात्मा घनी मूर्ति, तब इसको प्रेम कहते हैं। महाभाव किसको कहते हैं उसके लिए बतला रहे हैं, ये विशेष करके समझिए। महाभाव, महाभाव तो सभी जानते हैं, उसको समझने की चेष्टा करिए। महाभाव किसको कहते हैं, उज्ज्वल निर्मणि में श्री भक्ति श्री रूप गोस्वामी बत जावदाश्रय वृत्ति रूपे रूप में अनुराग जब स्वयं संवेद दशा को प्राप्त होकर के प्रकाशित होता है तब उसको भाव या महाभाव। फिर से समझो, जावद आश्रय वृत्ति के रूप में अनुराग, अनुराग माने क्या, नौ नौ रूप में अनुराग जब बढ़ता है, राधा जी का कृष्ण के प्रति, कृष्ण के प्रति राधा जी का अनुराग क्षण क्षण में नवीन होता जाता है, एक दूसरे से बढ़ना चाहता है कंपटीशन, और अंत तक वो बढ़ता जाता है। प्रेम के विषय है कृष्ण, उसकी सीमा है विषय आश्रय, और राधा जी क्या है, प्रेम की आश्रय है चरम सीमा तक। तो नंदनंदन श्रृंगारूप विषय तत्व की सीमा है, राधा जी आश्रय तत्व की सीमा है, जब वही अनुराग प्रतिक्षण बढ़ता जाता है चरम सीमा में जावदाश्रय वृत्ति को प्राप्त होता है। जावदाश्रय मानने की बतलाया ना, कृष्ण विषय की चरम सीमा है, राधा जी आश्रय की चरम सीमा, जब इन दोनों का अनुराग परस्पर अनंत सीमा तक जब कि बढ़ता, बढ़ने की ठाई नहीं है, जगह नहीं है, तभी वो बढ़ता चला जाता है। उस समय तत्प्रियसी जन विशेष में, प्रियसी जन कौन है, राधा जी, उनमें संवेद्य दशा प्राप्त होता है अनुराग। संवेद्य दशा माने क्या, वो अनुराग इतना बढ़ता है कि वही कर्ता, वही कर्म और वही करण होता है अनुराग ही। उस समय राधा जी स्वसंवेद दशा में प्राप्त होकर के भूल जाती हैं कि नाशो रमण, नाशो रमणी, ऐसी स्थिति में वो पहुंच जाता है। उस समय यह राधा जी स्थिर नहीं कर पाती हैं यह अनुराग कैसा है, कृष्ण भी नहीं चीज स्थिर कर पाते। उस समय कैसे मालूम होगा, वो सुदीप्त इत्यादि भावों से, धुमाई ज्वलित प्रज्वलित इत्यादि जो भाव होते हैं, भाव और संचार इत्यादि भाव, उसके द्वारा मालूम होता है कि ये ऐसे अभी प्रेम अनुराग इनमें आया है। इसलिए कहते हैं कि इसके द्वारा वो प्रकाशित होता है। यह जब मैंने बतलाया, ये अनुराग कर्ता भी है, और कर्ता माने कृष्ण के प्रति वो अनुराग होता है, अनुराग ही कर्ता, कर्म और करणी इत्यादि सभी कुछ है। ये है संवेद्य दशा में अनुभव, उसी प्रकार से मदनाख भाव का वर्णन किया है उन्होंने। आज तक किसी ने स्पर्श नहीं किया, किसी ने नहीं स्पर्श किया। मदनाख भाव क्या, केवल मिलन में होता है, और उसमें मिलन और विरह के जितने भी भाव असंख्य हो सकते हैं वो प्रकटित होते हैं। यहां तक कि कृष्ण भी नहीं उसका वर्णन कर सकते, और भी तो बात क्या, राधा जी के इस भाव को रूप गोस्वामी ने जगत को ये सब चीजें दी है। इसलिए आज उनके विरहतिथि के अवसर पर उनके चरणों में हम लोग प्रार्थना करते हैं कि सब लोगों के हृदय में वो स्फूर्ति प्राप्त कराएं। जरूर गोस्वामी क्या थे, क्या देने के लिए आए। और एक बात बलदेव प्रभु जी के संबंध में कुछ कुछ लोगों ने बोला है, मैं दो शब्द उनके संबंध में बतलाऊंगा। जिस समय रोहिणी मैया को वसुदेव जी ने गोकुल में भेजा, उसमें 3 माह की गर्भिणी थी। 3 माह की कौन कौन? ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण, 3 मास की गर्भिणी यहां आई। फिर भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक अग्रहायण, 4 और, ये 7 महीना हुआ। 7वें महीने में रोहिणी जी का गर्भ मालूम हुआ, समाप्त हो गया। समझो सब, रोहिणी जी का भी जोग मैंने ऐसा किया। और देवकी का 7 महीने का जो गर्भ था वो रोहिणी जी के गर्भ में दिया। क्या तात्पर्य हुआ? उसमें रोहिणी नंदन जो है उसमें ये देवकी नंदन जो है उनको आत्मसात कर लिया। जैसे गोकुल में कृष्ण ने नंदनंदन यशोदा नंदन ने वसुदेव नंदन को आत्मसात करके एक बन गए, ऐसे ये बलदेव जी के संबंध में समझो। बलदेव जी रोहिणी नंदन है, देवकी नंदन को भी आत्मसात कर लिया। और 14वें महीने में ऐसा लगा जैसे देवी जी का गर्भ नष्ट हो गया, नहीं वो तो दूसरे लेकर के जो माया ने वहां पर पहुंचा, ऐसे ही जी गोस्वामी ने इस चीज का वर्णन बहुत सुंदर रूप से किया है। अब 14 महीना कब से? ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक इत्यादि से लेकर के ये 2 महीने है ना, श्रावण। तो 14वें महीने में श्रावण से पहले जो पूर्णिमा आती है, श्रवणा नक्षत्र में पूर्णिमा को, उस समय में शक्तासुर का वध हो चुका है, उस समय में उनको दिया। और वे पूर्णिमा के दिन ही वो प्रकट हुए, आज पूर्णिमा के दिन। 14 महीने के बाद में 14 महीने तक ये गर्भ में रहे।
ज्येष्ठ मास में रोहिणी माँ गर्भवती हुई, भाद्र मास में कृष्ण का जन्म है, 16 महीना हो जाता है।
16 महीने नहीं, कैसे?
ज्येष्ठ आषाढ़ भाद्र आश्विन कार्तिक अग्रहायण,
नहीं नहीं नहीं, भादों के पहले कह रहे हैं। तो श्रावण महीने से पहले श्रावण नक्षत्र में पूर्णिमा को ये प्रकट हुआ।
और उसमें हो तो कृष्ण से 8 दिन बड़े हैं, तो भाद्र महीने में है, 8 दिन का अंतर कैसे रहेगा?
थोड़ा सा सामंजस्य करो, देखो अच्छी तरह से, बल्कि देख लेना, शंका हो तो गोपाल चंपू ये किस प्रकार से क्यों नहीं होता है। ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, वा कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, उससे पहले वाले 14 महीने ही होता। और जब 3 महीने के हुए तब तक बलदेव जी किसी से बातचीत नहीं करते थे। 3रे महीने में यशोदा मैया और रोहिणी मैया देखा जी घर के काम में असुविधा हो रही है, तो दोनों को एक साथ में रखा, एक पलंग पर किया जैसे वो अथवा ये देखती रहेंगे। और तब दोनों में मिलन हुआ, उसका जीव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। कहते हैं शक्तासुर का जब वध हुआ तो कृष्ण 30 दिन 3 मास के थे, 3 दिन। और बलदेव जी को कहा जी कुछ दिन, अर्थात बलदेव जी 8 दिन बड़े हैं। उसके लिए उन्होंने बतलाया है कि एक साथ में दोनों का नामकरण हुआ। यदि अधिक दिन बड़े होते एक वर्ष तो यह संभव पर नहीं था। दोनों एक साथ में रिंगण करते हैं, घुटरुओं पर चलते हैं, नामकरण भी एक समय में हुआ और जितनी भी लीलाएं होती हैं सब एक साथ में होता है। इसलिए बल उनका दीव गोस्वामी जी का यह कथन ठीक मालूम होता है, युक्ति युक्त कि केवल 8 दिन बड़े थे। दूसरी बात, कृष्ण सच्चित आनंद है, सत से सत्ता अथवा संदनी होता है, ये बलदेव जी है। कृष्ण चित है, पूर्ण चित, और आनंद कौन है? श्रीमती राधिका जी। तीनों मिला करके सच्चित ये आनंद है। देखो जैसे कि रसानंद जी ने बतलाया, बलदेव जी नित्य बल यहीं पर रहते हैं, जैसे कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके नहीं जाते, रोहिणी नंदन राम कभी भी वृंदावन को ब्रज को छोड़ करके नहीं जाते, सब समय यही रहते हैं। कैसे रहते हैं उन्होंने थोड़ा सा इस पर हिंट भी दिया। पहला जो चतुर्व्यूह है वो मथुरा या द्वारका में है, उसमें वासुदेव शंकरसन प्रद्युम्न अनिरुद्ध है। फिर और एक दूसरा चतुर्व्यूह है वैकुंठ में, उसमें भी वासुदेव शंकरसन प्रद्युम्न अनिरुद्ध है। उनमें जो शंकरसन है उनके शंकरसन के अंश कर्णाब्दिशाई, उनके अंश गर्भोदशाई, उनके क्षीरोपदिशाई और उनके जो है शेष, वो शेष अनंत है। कितने रूप में सेवा करते हैं, यहां तक कि सब रसों में सेवा करके भी, इसमें श्रृंगार रस में भी स्वयं अनंग बंजरी होकर के उनकी सेवा करते हैं। और फलदेव जी गुरु तत्व हैं, हिरण्यकश्यप का वध किया, इसका वर्णन किया। नैमिषारण्य में जब वहां गए लोमहर्षण सूत प्रवचन कर रहे थे पुराणों का, बलदेव जी आए, उनको प्रणाम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और सब ऋषि लोग उठ करके बड़े खड़े हो गए, अभिवादन किया उनका, उनसे बड़े बड़े योग्य थे लोग, ऋषि महर्षि लोग, वो लोग उठ करके खड़े। जब नहीं उठ करके गए तो ये गुरु होने लायक नहीं, ये प्रवचन देने योग्य नहीं, बस हाथ से उसका गला काट दिया। ऋषि लोग जब कहने, अब कहां से हम सुनेंगे, हाय हाय करने का, चाहे मैं जीवित कर दूं, नहीं, आपने जो कुछ किया। तब उसी के बेटे को उग्रश्रवा को वहां पर बैठाया और बैठा करके शक्ति संचरित की, और फिर हमारे सुखदेव जी की कृपा हुई और तब इन्होंने भागवत का प्रवचन किया। ये गुरु का कार्य है। वो हाथ में हल और मुसल रखते हैं, हल किस लिए? कृषि करने के लिए। कृषि क्या चीज? जीवों की खेती करते हैं। कैसे? गोलोक वृंदावन में नित्य परिकरों को प्रकट करते हैं, जो राधा कृष्ण की नित्य सेवा करते हैं। फिर वो द्वारका और बैकुंठ लीलाओं में जीवों की खेती करते हैं, जो कि बैकुंठ में श्री रामचंद्र जी से लेकर के जितने भी भगवत अवतार हैं उन सब की सेवा करते हैं। कृष्ण की सत्ता, उनकी बंसी, उनकी जितनी जो कुछ है, कपड़े से लेकर के सब कुछ, ये बलदेव प्रभु जी हैं, सब रसों से उनकी सेवा करते हैं। और जीव के हृदय में भी खेती करते हैं, प्रेम की खेती करते हैं, उनको प्रेम प्रदान करते हैं। नित्यानंद प्रभु के रूप में बतलाओ, हाथ उठा करके कहते हैं यथेष्टम रे भ्राता गुरु हरि हरि ध्वान मनीषम ततो वा संसार दायुं वै लगे इदम बाहु स्फोट रटति रतन जा प्रतिगृहम भजे नित्यान। कहते हैं कि तुम लोग एक बार हरि नाम करो, कृष्ण नाम करो, यदि संसार से तुम्हारा उद्धार नहीं हो गया तो इसके लिए मैं दायी हूं। ये नित्यानंद प्रभु ही कह सकते हैं, इनके चरित्र बहुत असंख्य हैं। मैं यहीं पर उनसे प्रार्थना करता हूं, रूप गोस्वामी से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोगों पर दया करें, हमारे ऊपर भी दया करें, जो उनकी इन महिमा को हमारा हृदय स्पर्श कर सके। गौर प्रेमानंदे, सब लोगों को विशेष धन्यवाद है कि इतना रात होने पर भी आप लोग यहां पर सुनते रहे, और कितने सुंदर सुंदर और वक्ता